नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की अग्रणी विमानन कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। देश तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका परस्पर कारोबार को प्राथमिकता के आधार पर बाजार तक पहुंचाने को इच्छुक। नीट पीजी 2025 की परीक्षा अगली सूचना तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद एक ही पाली में आयोजित होंगी परीक्षाएं। मौसम विभाग ने आज देश के पूर्वोत्तर राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, केरल और गोवा में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। दक्षिण कोरिया में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। और क्रिकेट में आईपीएल के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पंजाब किंग्स से। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की अग्रणी विमानन कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में तीसरे सबसे बड़े घरेलू विमानन बाजार के रूप में उभर कर सामने आया है। नई दिल्ली में कल अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संगठन की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की अग्रणी विमानन कंपनियों के लिए निवेश का एक शानदार अवसर प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक विमानन व्यवस्था में व्यापक बाजार के साथ नीति नेतृत्व, नवाचार और समावेशी विकास के प्रतीक के रूप में भारत की भूमिका पर बल दिया।
आज का भारत पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ग्लोबल एविएशन इकोसिस्टम में हम न केवल एक विशाल मार्केट है, बल्कि पॉलिसी लीडरशिप, इनोवेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के प्रतीक भी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में देश में 74 परिचालन योग्य हवाई अड्डे थे, जो अब बढ़कर 162 हो चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैश्विक महत्व के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारतीय रुख का निरंतर समर्थन करने के लिए पैराग्वे की सराहना की है। पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस का कल राष्ट्रपति भवन में स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और पैराग्वे के बीच सौहार्दपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने पहलगाम में हुए हमले के बाद आतंकवाद की कड़ी निंदा और भारत के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए पैराग्वे सरकार का आभार व्यक्त किया। भारत और पैराग्वे ने स्वच्छ ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन तथा जैव ईंधन जैसे क्षेत्रों में अपने संबंधों को और मजबूत करने का फैसला किया है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान ये निर्णय लिया गया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के कारोबार को प्राथमिकता के आधार पर बाजार तक पहुंचाने के इच्छुक हैं। पेरिस में मीडियाकर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि दोनों देश प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ दोगुना करके 50% करने की घोषणा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि दोनों देश इन सभी मुद्दों को आपसी सहमति से हल करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। श्री गोयल व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फ्रांस के नेताओं और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के लिए सरकारी दौरे पर पेरिस में हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट पीजी परीक्षा स्थगित कर दी है। ये परीक्षा 15 जून को होनी थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए बोर्ड ने नीट पीजी परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का फैसला किया है। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा के लिए अधिक केंद्रों और आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने के उद्देश्य से इसे स्थगित किया गया है। बोर्ड ने कहा कि परीक्षा की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले महीने की 30 तारीख तक ग्रीष्मकालीन फसल की बुआई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वर्ष 84 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.2 लाख हेक्टेयर अधिक है। दलहनों में मूंग और उड़द, मोटे अनाज और तिलहन तथा मक्का और मूंगफली में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे जल संचय जन भागीदारी अभियान में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश देश में चौथे नंबर पर है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि पानी का संचयन करने के लिए मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है।
यह हमारी राज्य की 247 नदियों के उद्गम स्थल से लगा करके हमारे सभी नदी, बावड़ी, कुएं, तालाब, पुरानी जल रचनाएं, खेत तालाब की योजनाएं, इसके माध्यम से आने वाले समय में मध्य प्रदेश बिल्कुल एक नई दौर में पहुँचने वाला है।
खंडवा जिले के कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में जन सहयोग से 1,29,000 से अधिक संरचनाओं का निर्माण और पंजीकरण किया गया है।
अंतिम लक्ष्य ये है कि खंडवा जिले की हर एक पक्की छत का पानी धरती के नीचे जाना चाहिए, उसके लिए एक 5 फेज की कार्य योजना अगले पूरे 1 साल की बनाई गई है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के आधार पर भारत सरकार द्वारा जिले में किए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद ही अंतिम रूप से केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कार घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 6 सितंबर 2024 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की गई थी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत के सैद्धांतिक और दृढ़ रुख के अनुरूप सांसदों के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपने आउटरीच कार्यक्रम के साथ विभिन्न देशों की यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्राजील के चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के विदेश मामलों और राष्ट्रीय रक्षा समिति के अध्यक्ष फिलिप बरोज से मुलाकात की। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में एक अन्य बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल ने काहिरा में मिस्र के विदेश मामलों की परिषद के साथ बैठक की। इससे पहले शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने लाइबेरिया के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष रिचर्ड नागवे कून और प्रतिनिधि समूह के साथ बैठक की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए पूरा राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इस कड़ी में आज हम परमवीर चक्र से सम्मानित सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे को याद कर रहे हैं, जिन्होंने वर्ष 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अविश्वसनीय बहादुरी का प्रदर्शन किया था।
वर्ष 1918 में वर्तमान में कर्नाटक में जन्मे सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे दिसंबर 1947 में सेना की इंजीनियर्स कोर में शामिल हुए। 21 वर्षों की अपनी सैन्य सेवा के दौरान उन्हें 5 बार मेंशन इन डिस्पैचेस सम्मान प्राप्त हुआ। वर्ष 1947-48 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने मार्च 1948 में झांगर क्षेत्र पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करने के बाद वहां के नागरिकों को दुश्मन की क्रूरता से बचाने के लिए नौशेरा से राजौरी की ओर एक अग्रिम अभियान की योजना बनाई। 8 अप्रैल को 4 डोगरा बटालियन ने अपना हमला शुरू किया, लेकिन उसका मार्ग बारूदी सुरंगों और सड़क अवरोधों से बाधित था। सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे इस दौरान 37 असॉल्ट फील्ड कंपनी की एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। सेकंड लेफ्टिनेंट राणे ने इस दौरान शत्रु के मोर्टार हमलों के बीच असाधारण साहस और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। 8 अप्रैल के दिन घायल होने के बावजूद भी उन्होंने टैंकों के लिए मार्ग को साफ करने के लिए बारूदी सुरंगों और बाधाओं को हटाने का कार्य जारी रखा। उनके इन्हीं प्रयासों के कारण भारतीय सेना राजौरी तक पहुंचने में सफल हुई, जिससे दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा और असंख्य निर्दोष नागरिकों का जीवन बचाया जा सका। उनके अद्वितीय साहस, दृढ़ निश्चय और सेवा भावना के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में पूरे दिन बारिश होने के आसार हैं। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। उधर असम में पिछले 24 घंटे में 5 और जिलों में बाढ़ का पानी फैलने से स्थिति खराब हो गई है। बाढ़ से 65 राजस्व सर्किलों के 1250 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं और राज्य भर में 12,600 हेक्टेयर से ज्यादा फसलें बर्बाद हुई हैं।
असम में 5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की पहली लहर से जूझ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में होजाई में बाढ़ से एक व्यक्ति की मौत हो गई और डिब्रूगढ़ और हैलाकांडी में 2 लोग लापता हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार ब्रह्मपुत्र, बराक और उनकी सभी सहायक नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। पिछले 24 घंटों में बाढ़ ने 89 सड़कों और 4 पुलों के अलावा अन्य बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचाया है। राज्य सरकार ने 165 राहत शिविर और 157 राहत वितरण केंद्र खोले हैं। जिला प्रशासन ने बचाव और राहत कार्य के लिए SDRF की टीम तैनात की है। इस बीच मौसम विभाग ने असम में कई स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना जताई है। असम से अमीनुल ज्वारदार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
दक्षिण कोरिया में कंजर्वेटिव पार्टी के यून सुक योल के स्थान पर नए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए मतदान चल रहा है। यून सुक योल को देश में मार्शल लॉ लागू करने के कारण उनके पद से हटा दिया गया था। विजेता उम्मीदवार को कल राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। IPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच खिताबी मुकाबला होगा। दोनों टीमें अपना पहला IPL खिताब जीतने के लिए मैदान पर उतरेंगी।
फाइनल में जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो उनका लक्ष्य ये प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने का 18 साल का इंतजार खत्म करना होगा। सभी की निगाहें बेंगलुरु के विराट कोहली पर टिके रहेंगी, जो शुरू से RCB से जुड़े होने के बावजूद अभी तक अपनी टीम को IPL का चैंपियन नहीं बना पाए। RCB और कोहली का ये चौथा फाइनल होगा। उधर पहले क्वालिफायर में RCB से मिली करारी हार के बावजूद श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स की टीम ने 11 वर्षों के बाद पहली बार फाइनल में प्रवेश किया है।
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौजूदा विश्व चैंपियन डी कुकेश ने कल रात नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट के 7वें दौर में ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसी पर जीत हासिल की। टूर्नामेंट में कुकेश ने कल के मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए ये जीत हासिल की। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुल्ला में माता रागन्या देवी मंदिर में वार्षिक खीर भवानी मेला पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेले के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा उपाय और प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। गोवा में निजी टैक्सी संचालकों ने टैक्सी समूह ऐप लॉन्च करने की सरकार की योजना का विरोध किया है। निजी टैक्सी संचालकों का कहना है कि ऐप द्वारा टैक्सी सेवाएं शुरू होने से उनका व्यवसाय प्रभावित होगा और स्थानीय टैक्सी चालकों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना।
धन्यवाद निखिल। दैनिक जागरण, बिजनेस स्टैंडर्ड और अमर उजाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, भारत को 2030 तक ग्लोबल एविएशन रिपेयरिंग हब बनाने का लक्ष्य। राष्ट्रीय सहारा और वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री तथा पराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पालेसियोस से मुलाकात का समाचार प्रकाशित किया है। जनसत्ता, पंजाब केसरी और हरिभूमि के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हिंदुस्तान ने गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के इस बयान को सुर्खी बनाया है, राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य गोदामों की मैपिंग की जाएगी। जनसत्ता, वीर अर्जुन और हरिभूमि की खबर है, भारत को S-400 प्रणाली की शेष 2 इकाइयां 2026 तक मिल जाएंगी। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार मई में UPI से 25 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लेन देन हुआ। पत्र ये भी लिखता है, जल्द ही शुरू होगी लंबी दूरी की वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। दैनिक जागरण के कारोबार पन्ने का आकलन है, कल से होने वाली मौद्रिक नीति बैठक में RBI कर सकता है रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती। अमर उजाला और दैनिक भास्कर की खबर है, सस्ते होंगे इलेक्ट्रिक वाहन, कंपनियों को मिली आयात कर में बड़ी राहत।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की अग्रणी विमानन कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। देश तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका परस्पर कारोबार को प्राथमिकता के आधार पर बाजार तक पहुंचाने को इच्छुक। NEET PG 2025 की परीक्षा अगली सूचना तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद एक ही पाली में होगी परीक्षा। मौसम विभाग ने आज देश के पूर्वोत्तर राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, केरल और गोवा में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। दक्षिण कोरिया में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी और IPL के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पंजाब किंग्स से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।